الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عزیز بھائیو، جیسے آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کا اختتام ہو گیا ہے. الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس کے فضل و کرم سے اس سورت کو ہم سبکن سبکن حرفن حرفن 45 اسباق میں ہم نے پڑھ لیا ہے. کم و بیش ایک سال جو ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ لگا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے جیسے اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اپنی پوری استطاعت سے اور کوشش سے اس کے مفاہیم کو، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوشوں کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ سورت جو ہے اس کا تھوڑا سا آج ہم اس کے مضامین، تفصیلی مضامین تو ظاہر ہے ہم سبکن سبکن پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا آج ہم نے سوچا کہ جو اس کے مضامین کا جو ہم نے پڑھے ہیں ان کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے. یعنی اس پروگرام کا یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس سورت کا ایک مکمل خاکہ موجود ہے، اس کے مضامین کا، کہ اس سورت کی تقسیم کیا ہے مضامین کی. یہ بہت طویل سورت ہے، قرآن کی طویل ترین سورت ہے ظاہر، اور اس میں ظاہر مضامین کی جو تقسیم ہے اس پہ کافی غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے وہ اس مقام پہ اندازہ ہو پاتا ہے کہ یہ مضمون کس مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہٰذا یہ میں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے آپ کے سامنے کہ اس کے جو ایک بصری خاکہ ہے اور پھر مضامین کا ایک جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے دونوں آ جائیں تاکہ یاد دہانی میں آسانی رہے، اور آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس حد تک اس کو جو ہے آپ نے جو سمجھا ہے، اس کو گریسپ کیا ہے. آپ اس کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیان کریں اس کو، گھر والوں کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یا پھر اس کو آپ جو ہے لکھیں اپنی طرف سے کہ میں کتنا سمجھ پایا ہوں کہ سورت کا پورا جو نظم ہے، جو ڈھانچہ ہے، مضامین کی تقسیم ہے، جو بصری خاکہ ہے، وہ کتنی حد تک میں خود اس کو جو ہے ریپروڈیوس کر سکتا ہوں میں اس کو. تو یہ ایک مشق کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور آج سے آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ مدد ہوگی. یہ جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کی، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ دوسری صورت ہے جو، اور اس کے جو نام جو ہے البقرہ، اب ظاہر ہے بقرہ جو ہے وہ کوئی نام صورت کا، جو جیسے تمام صورتوں کے نام ہے یہ بھی اس کا ایک نام ہے، اور اس کی بھی کئی جو ہے اس کا بکرا نام جو ہے، نام جتنی بھی صورتوں کے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ سمبولک ہیں اور وہ صورتوں کے مضامین میں سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بکرا یعنی گائے کا تذکرہ ہے، تو بس اسی مناسبت سے ایک جو ہے وہ علامتی نام جو ہے تجویز کیا گیا ہے اس کا. تو یہ جو ہے سورہ البقرا اس کا ایک نام ہے. اس کے دیگر نام بھی مفسروں نے رکھے ہیں جن میں ایک سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کی بلندی، سنام چوٹی کو کہتے ہیں. پھر جو ہے پھر ذروہ بھی اسی طرح، جو چوٹی جو جیسے وہ ہوتی ہے ایک ان کی کوہان ہوتی ہے، تو کوہان میں بھی ایک جو ہے اونچا مقام کوہان کا جو ہوتا ہے وہ ذروہ، وہ بھی چوٹی. فستات القرآن، قرآن کا خیمہ، یہ جو ہے ان کے نام. ان کو ایک نام اس کا سورۃ المطمئن بھی جو ہے تجویز کیا گیا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں دو امتوں کی جو ہے وہ کہانی ہے، دو امتوں سے خطاب ہے. ایک امت کے زوال، عروج اور زوال کی کہانی ہے، اور دوسرے امت کی نسب کی کہانی ہے. نسب کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کمیشن کیا گیا ہے اس امت کو، اور اس امت کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. दो और फिर जो है उसको उज्मत को खिताब भी किया गया है। तो यूं दो उम्मतों का तज़किरा है, दो उम्मतों से खिताब है। ये सूरह बक किस जमाने में नाजिल हुई ये भी जान लें कि ये मदीना के, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मदीना तशरीफ ले गए हजरत के बाद, तो ये इब्तदाई दौर है बिल्कुल मदीना का, तो उसमें ये नाजिल हुई है। इसीलिए अब इसके में जो अहकामात हैं, तो फिर वो अहकामात हैं जो इस्लामी माशरे को, जिन अहकामात की, इस्लामी अहकामात की जरूरत थी। अब इस्लाम बिल्कुल जो है नया नया एस्टेब्लिश होने जा रहा है माशरे में, अब माशरे में जिन अहकामात की और हर किस्म के अहकामात की जिंदगी में के हर शोबे में जो है वो रहनुमाई की और हिदायत की और अहकामात की जरूरत थी, तो वो अहकामात यहाँ पे उतरना शुरू हुए। और उनमें से अक्सर और बेशतर जो है जो इब्तदाई नौइयत के जो अहकामात हैं वो इस सूरत के अंदर उनका नुज़ूल हुआ। अब इस सूरह बकरा का रब्त जो है किताब के अंदर, जो किताबी रब्त है, और मुसहफ के अंदर कुरान में मौजूदा जो तरतीब है इसके अंदर, इसमें इसका मकाम क्या है, तो अब देख लें कि इससे पहले इसकी सूरह फातह है। सूरह फातह में वो पूरी की पूरी दुआ है, इंसान अपने रब से दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब मेरे, मुझे जो सीधा रास्ता दिखा, मेरी रहनुमाई फरमा। उसका जवाब अल्लाह ताला इस पूरे कुरान की सूरत के अंदर जो आ गया माना कि ये वो किताब है, इसमें वो हिदायत है और वो रहनुमाई है जो तूने मुझसे मांगी है, और पूरे का पूरा उसका कुरान जो है उसका जवाब है। और उसका ये जवाब जो है अलबकरा से जो है वो शुरू होता है। सूरह फातह के बाद चार बड़ी तवील सूरतें जोड़ों की शक्ल में, ये सूरह बकरा और सूरह अल इमरान का जोड़ा है, और सूरह निसा और सूरह मायदा का जोड़ा है। जोड़ा इन मानों के अंदर है, जो अजवाज के जो लफ्ज होता है कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर एक मजमून बयान हुआ है एक सूरत के अंदर, तो मजमून का जो एक पहलू है वो एक सूरत में, और उसके जो दूसरा पहलू है एक मजमून का वो दूसरी सूरत में होता। मसलन अगर आप ये देखें कि अलबकरा में तो यहूद को जो है वो खिताब किया गया है, और फिर साथ उम्मत मुसलमान को भी है उस हवाले से, और आले इमरान के अंदर फिर जो दूसरे अहले किताब हैं, तो अहले किताब जो जो ईसाई हैं उनको खिताब किया गया, और फिर साथ मुसलमानों को भी। इसी तरह अनिसा और मायदा का जोड़ा है, तो उनके अंदर भी जब हम इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, उनके अंदर भी मजामीन की एक जो है ये नस्बत मौजूद है। सूरह फातह में ये जो अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि मगदूम कौम का जो जिक्र है यहूद, और उन पर जो है इसी सूरत बकरा के अंदर उन पे जो है एक फर्द जुर्म है, और फिर जो तालीन कौम है वो जो नसारा है जिनके बारे में कहा जाता है, वो उनके ऊपर जो फर्द जुर्म जो है वो आले सूरह आले इमरान के अंदर है। और इसके बारे में बहुत सारी हदीस है, हम पढ़ रहे हैं नबी कसम ने फरमाया कि हर चीज की एक चोटी होती है, और कुरान की चोटी बकरा है, और उसमें एक ऐसी आयत है जो तमाम आयत की सरदार है, और वो आयत अल कुर्सी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घर में पढ़ने की जो है वो ताकीद फरमाई है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, और उसमें सूरह बकरा को जो है वो पढ़ा करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उससे शैतान फिर भाग जाता है। फिर इन दोनों सूरतों को, सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान को, अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरा वैन का नाम अता फरमाया। जहरा किसी चीज, कोई रोशन चीज को कहते हैं, और जहरा वैन दो रोशन चीजें, इनको जो है फरमाया। मैं कि कुरान मजीद पढ़ा करो, कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बन के आएगा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और फरमाया कि दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो, यानी अल बकरा और अल इमरान, क्योंकि ये कयामत के रोज दो बादलों की सूरत में या दो साहिबान की सूरत में या दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें होंगी उन सूरत के अंदर जो आएंगी, और अपने पढ़ने वालों के लिए उनके बारे में झगड़ा करेंगी, यानी उनके बारे में सिफारिश करेंगी। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बायस बरकत है, और उसके छोड़ना बायस हसरत है, और जादूगर इसको हासिल करने की ताकत नहीं रखते। यानी इसके बारे में उलमा ने इस हदीस से ये भी मतलब निकाला है कि इसको पढ़ा जाए तो फिर जादू जो है वो उस पे असर नहीं करेगा। अब ये जो जो मुख्तलिफ हम जो फजीलत बयान करते हैं और हदीस में जिन फजीलतों का जिक्र है, आयात के फजीलतों का जिक्र है और कुछ सूरतों की जो फजीलतों का जिक्र है, तो उसके बारे में एक एक असूली बात जो जान लेनी चाहिए कि ये जो फजीलत और सवाब की जो हदीस है, इनसे ये नहीं मुराद नहीं है कि आप वो आयत एक ले जाओ ले लें और फिर उसको पढ़ बैठ जाएं और उसको फिर जो है वो उसका विद शुरू कर दें और उसका रट्टा और उसकी रेपिटेशन जो है वो करें, तो बल्कि ये जो है इसका इससे मुराद ये होती है कि ये कुरान जो है पढ़ने और समझने के लिए और गौर व फिक्र के लिए है, तो उसको उसकी तिलावत जो है पूरे शऊर और फहम के साथ और उसमें गौर व तदब्बुर के साथ और फिर उसके बाद जिसका वो तकाजा करती है वो उस पर अमल करना जो है वो भी साथ हो, तो फिर ये फजीलतें और ये सवाब और ये उसके जो उनके अंदर जो चीज मस्कूर है वो चीज जो है फिर हासिल होती है, महज किसी चीज की रेपिटेशन से जो है वो ऐसे वो जो नतीजे हासिल नहीं हो पाते। सूरा ये बाल बकरा जो कुरान की सात तवील सूरतों में से एक सूरत है और ये पहली सूरत भी जो हरूफ मुकत्तियात से शुरू होती है, तरतीबी नजूली तरतीब से, यानी जो जब इससे पहले 86 सूरतें नाजिल हो चुकी थी जब ये सूरत उतरना शुरू हुई है, और ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत भी है, ढाई पारों पर मुश्तमिल है, 286 आयात हैं, 40 रुकू हैं। इस सूरत में जो कुछ उलमा ने जिन्हें गिना है उन्होंने कहा कि 130 मुख्तलिफ अहकाम बयान हुए हैं जो किसी भी सूरत से में से सबसे ज्यादा इसमें कुरान की सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयत भी इसी सूरत में आयत अल कुर्सी और कुरान की सबसे तवील आयत भी जो आयत मदाइना है वो भी दैन वाली आयत जो है वो भी कर्ज वाली वो भी इसी सूरत के अंदर और कुरान की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली एक आयत भी इसी सूरत में है जो 281 है जिसके बारे में कहा गया है मुफस्सिरों ने कहा है कि इस आयत के नाजिल होने के सिर्फ 9 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। अब जिसका हमने जिक्र किया है कि ये तवाल में से, तो ये आपकी मालूमात के लिए कि उलमा ने जो है वो सूरतों के हवाले से जो है कुछ तकसीम की है, तवाल तूल से तवील में लॉन्ग, तो ये जो है सूरह बकरा उससे आगे कुल 6 सूरतें हैं ये तवाल कहलाती है, ये काफी तवील है और में से हर एक जो तकरीबन 200 आयात इससे ज्यादा पे मुश्तमिल है और ये सूरह अल बकरा से लेकर सूरह तौबा तक है और फिर सूरह और फिर इसकी एक और तकसीम है अल मेन जो है वो सूरतें जिनमें से हर एक में कम बेश 100 आयात हैं और ये सूरह यूनस से लेकर सूरह फातिर तक है, फिर अल मसानी है वो सूरतें जिनमें वाकयात और कसस और नसीहतें बार बार बयान किए गए और इनकी एक आप कह लेंगे एक मुश्तरक इनका एक खसूसियत है, ये सूरह यासीन से लेकर सूरह कौफ तक इनका जो है वो ये मुश्तमिल है, फिर उसके बाद जो है मुफस्सलात हैं ये मुफस्सल भी कहलाता है और ये मुख्तलिफ मजामीन वाली सूरत 65 सूरतें हैं और ये फिर सूरह अलहुजरात से लेकर कुरान के जो है वो आखिर तक है, उनमें से 29वें पारे की जो है वो इंजार के बारे में है, ये अलहुजरात से ये अलबुरुज तक है और फिर इनके बाद में किसार सूरत भी होती है जो जो है जो कुछ कम जो है औसत जो है किसार हैं या मुफसल हैं और कुछ जो है वो किसार हैं, तो वो सूरह जलजला अलजलजला से लेकर सूरह जलजाल से लेकर कुरान के सूरह नास तक जो है ये किसार हैं, फिर औसत जो है वो तारिक सूरह तारिक से बैना तक है, तो ये तवाल की जो है मुफसलात की ये तफसील है, ये आपकी मालूमात के लिए है बस, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप जो इनके जो इनको वो करें, उलमा ने इनकी खसूसियात की बिना पे इनको जो इनकी तकसीम की है। सूरह बकरा के मजामीन में अब ये जानना ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसके मजामीन क्या है, सूरह बकरा में एतकादात इबादात मामलात विरासत इज़दवाजी जिंदगी अखलास जिहाद और जिंदगी के तमाम जो जो जिंदगी से मुतलिक मसाइल हैं उनका जो है वो जिक्र मौजूद है, कहीं कहीं पे इजमालन है کہیں کہیں پہ تفصیلن ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید میں ابتدائی سے یہ جو بڑی صورتیں ہیں ان میں دو مضمون مسلسل چلتے رہتے ہیں, کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے. اور جو دو مضمون ہیں وہ ایک ہے شریعت اسلامی. اب شریعت چونکہ یہ ٹائم وہ ٹائم پیریڈ ہے جب اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کمیشن ہونے کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ ایک اسلامی ریاست جو بالکل سٹی اسٹیٹ ابتدائی حالت میں جو اسٹیبلش ہونے کے بعد, تو بعد میں تدریجن جو ایک تکمیل کی طرف اس کی صورت احکام کی جا رہی تھی, تو یہ سارے معاملات جو ہے وہاں پہ ان صورتوں کے اندر ان کا بیان ہوا. تو جو ہے لہذا شریعت کے احکام مسلسل چلتے رہتے. دوسرا جو ہے وہ اہل خطاب سے, مکی قرآن میں تو ظاہر ہے مشرقین سے خطاب تھا کیونکہ وہاں زیادہ جو ہے وہ اہل کتاب موجود نہیں تھے, بس اکا دکا ہی ہوا کرتے تھے. تو مدینہ میں تو پھر جو ہے صورتحال بدل گئی. مدینہ میں تو بہت بڑا جو ہے وہ گروہ یہود کا تھا, اور پھر اس سے قریب متصل آبادیوں میں یہود عیسائی بھی موجود تھے, ان کے ساتھ بھی تعامل اور انٹریکشن رہتا تھا. تو پھر ان اس یہاں پہ ان سے بھی جو خطاب کیا گیا. اب دیکھ سکتے ہیں اس بصری خاکے کے اندر کہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو احکامات موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے زندگی کا, اگرچہ یہاں پہ ظاہر ہے یہ ایک لمیٹیشن ہے ہماری صفحے کی, ورنہ اگر یہ احکامات کی جیسے لسٹ بنائیں جیسے ہم نے کہا کہ 130 کے قریب احکامات ہیں, تو وہ بالکل ہر شعبہ زندگی سے جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر. اچھا اب سب سے اہم بات آتی ہے کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. اچھا مرکزی مضمون طے کرنے میں کافی جو ہے یہ آسان نہیں ہے, اتنی سورت کا 286 آیات ہوں, اتنے متفرق احکامات ہوں, اور جو ہے پھر ان کے اندر ان میں سے مشترک مضمون تلاش کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے. لیکن جن علماء نے ان پہ غور و تدبر اور فکر کیا ہے اور جیسے ابھی ہم پڑھ بھی آئے ہیں, تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ امامت کی تبدیلی ہے. اور چونکہ سورت کا بیشتر حصہ دو امتوں سے, امت بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خطاب ہے, تو وہ اسی سے متعلق ہے اور وہ امت کی تبدیلی سے متعلق. اور یہ امت کی تبدیلی ہے کیا؟ یہ بنی اسرائیل کی امامت جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے 1900 قبل مسیح سے لے کر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ چلی آ رہی تھی, تو یہ 2500 سال پہ کا محیط عرصہ ہے, طویل عرصہ ہے جس کے اندر جو ہے امامت بنی اسرائیل کے پاس رہی ہے. اب ان سے یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معزول کر رہا ہے, اور اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں, ان کی جو غیر معتدل رویے تھے, ان کے برے خصائل, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی نافرمانی ان کی تھی اور سرکشی تھی, اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عہدے سے, بڑے اہم عہدے سے, امامت سے معزول کر دیا. اور پھر امت مسلمہ کو اس منصب پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا, اور پھر جو ہے یہ بتا بھی دیا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اب یہ کام جو ہے یہ وہی کام جو اس سے پہلے پچھلی امت کرتی رہی تھی, جن کے ذمہ لگایا گیا تھا, اب یہ کام امت مسلمہ تا قیامت جو ہے وہ کرے گی. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اس کے مضامین کی تقسیم دیکھ لیں کہ پہلی 39 آیات جو ہے وہ تمہیدن ہیں, اور اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ ان کے مضامین کیا ہیں. پھر دوسری جو بڑی مضمون کی تقسیم ہے, یہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ اوور ویو ہے, یا ایک مضمون کی جو ہے وہ بڑی تقسیم ہے, میکرو سٹرکچر ہے جو ہے سورت کا. تو اس میں بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے دوسرے, اور یہ کم و بیش 100 کے قریب جو ہے وہ آیات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کا کافی اس سورت کا بیشتر حصہ جو ہے اس پہ مشتمل ہے, کہ آدھے قریب قریب آدھا حصہ جو سورت کا بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے ان کو امامت سے معزول کر دیا گیا. پھر جو ہے 140 کے قریب ہی, 142-143 کے آیات جو ہیں وہ اس, جب ان کو معزول کیا گیا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امت مسلمہ کا تقرر کیا گیا, اس سے متعلق ہے. अब उनको जो है अहकाम दिए गए, और फिर जो है वो तीन आयात पर मुश्तमिल जो इसका इख्तिताम है। अब जो पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से के अंदर अब जो है वो उसमें भी तीन मजमून बयान हुई है। पहले पहले मजमून के अंदर तो तीन गिरोहों को, इंसानों को जो बताया गया कि कुछ मोमिनीन है, उनकी सिफात बयान की गई है, फिर कुफार है उनकी सिफात बयान की गई, और मुनाफकीन है उनकी सिफात बयान की गई। और ये वो तीन गिरोह थे जो मदीना के अंदर अब जो है मौजूद थे, तो तीनों की जो है वो सिफात जो है यहाँ पे बयान की गई। फिर उसके बाद 9 आयात पे मुश्तमिल जो है दावत है, दावत का मजमून है कि तमाम इंसानों को, जी तमाम जो गिरोह मौजूद थे वहां पे गैर मुस्लिम समेत, वहां पे कुरान और ईमान की दावत जो है उनको शामिल की गई है। उनको बताया गया है कि तुम जो है वो इसमें शामिल हो जाओ, और अल्लाह ताला पे और इस रसूल पे और इस किताब पे ईमान ले आओ, ये दावत दी गई है। और तीसरा हिस्सा जो है उसका वो 10 आयात पे मुश्तमिल है, वो इंसान के मनसब खिलाफत की जो है वो बात की गई है, और उसमें फिर इब्लीस का किरदार है, और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा है, कानून हिदायत तो जजा और सजा का बयान किया गया है। तो ये जो है खुदा, इसका पहला हिस्सा है जो उसमें बयान किया गया। अब दूसरा हिस्सा जो है वो तवील है काफी, बनी इसराइल के खिलाफ फर्द जुर्म है और बनी इसराइल की इमामत के मनसब से माजूली है। तो इसमें इसके भी जो है वो 6-7 हिस्से किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बनी इसराइल को पहले दावत दी गई है, और फिर उनको आखरत की याद दहानी करवाई गई है, और अल्लाह ताला ने जो बेशुमार एहसानात फरमाए बनी इसराइल पर, उन एहसानात का तज़किरा है, और उनकी अहद शिकनियों और सरकशी और उनके जरायम जो थे उनकी तारीख जो है वो बयान की गई है, और मुख्तलिफ किस्म के उनके अंदर जो नस्ली तासुब था, जो अपना वो फख्र जिसपे महसूस करते थे अल्लाह ताला से, जो उन्होंने अहद व पैमान जो बांधे थे, और उनकी जो जो अहदा वादा खिलाफी की थी उनका जो है वो तज़किरा है, उनकी फिर बगावत का तज़किरा है, उनके जो नस्ली तासुब है जिसकी बिना पे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानते थे उसका तज़किरा है, उनके बहुत सारे जरायम का जो है वो तज़किरा किया गया है। हमने थोड़ा सा उनको जो है एनलिस्ट किया है आखिरी अगली उसमें स्लाइड्स के अंदर, और फिर ये भी साफ किया गया है कि उनको जहां जहां पे उनकी भी तनकीद की गई है, नकद लगाई गई की गई है, और उन पे फर्द जुर्म आयद की गई है, फिर साथ ये भी बताया कि अभी भी तुम्हारे पास एक चांस मौजूद है कि तुम जो है अपने आबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का रास्ता अख्तियार करते हुए इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसी रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं, इस पे ईमान ले आओ, तो तुम्हारे लिए अभी भी जो तुम्हारी फलाह का सामान जो है वो मौजूद है। तो ये जो है वो मुश्तर हिस्सा है। अब इस हिस्से के दो बातें अहम हैं, और पहली वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि देखो बतौर उम्मत जब आपने बर्पा किया है तो तुम्हें उरूज नसीब फरमाया, और तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा अल्लाह ताला ने, और ये खास तौर पे दो मरतबा जो है वो तकरार के साथ है कि या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती, ऐ बनी इसराइल तुम मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारी ऊपर की थी। अब नेमतों का इतनी नेमत अल्लाह ताला ने की थी, मतलब उनको किताब और शरीयत अता फरमाई थी, उनको जब वो गुलाम थे फिरौन के और अहले अहले आले फिरौन के, तो उस गुलामी से निजात दिलाई। फिर उसके बाद जब वो दश्ते तिया के अंदर सहाई में, यानी उसकी जो है वो उसके अंदर दश्त के अंदर भटक रहे थे सजा के तौर पे, जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो एक इब्तिला नाजिल की है और उन्होंने जब जिहाद से इनकार किया था, तो फिर उस वक्त जो है उनके हालात जब बहुत खराब थे, तो अल्लाह ताला ने उनको खाने को दिया, आसमान से उनके लिए खाना उतारा। फिर दुश्मन के मुकाबले में जब वो भाग रहे थे दुश्मन से, तो समुन्द्र में अल्लाह ताला उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन को गर्क कर दिया और उन्हें बाहिफाजत समुन्द्र से पार जो है उतारा। फिर अल्लाह ताला ने उनको फलस्तीन की सरजमीन अता फरमाई जो है, फिर 40 साल की सहराना वर्दी में जो वो करते रहे बादल के साया फराम किया, अल्लाह ताला की रूयत के इसरार पे जब उनको मौत आ गई तो अल्लाह ताला ने मौत के बाद दोबारा उनको जिंदा किया और उन्हें माफ कर दिया। अब इसके बावजूद अल्लाह ताला के साथ शिर्क जो है वो जैसे जुर्म वो करते रहे किया उन्होंने, उसको भी अल्लाह ताला ने फिर माफ किया, بنی اسرائیل میں نبوت، شریعت اور بادشاہت، جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھی جو ہے بھیجے، رسول بھی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہ بھی بھیجی جن کو اللہ تعالیٰ بادشاہ، تو بہت ساری نعمتوں کا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو بطور تحدیث نعمت کے یا جو ہے تذکیر نعمت کے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو گنوایا ہے یہاں پہ. یاد کرو کہ اب نے تمہیں کتنی نعمتیں تم سے دی تھی. اب یہ جو حصہ ہے اس میں یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت سے متعلق ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں کہ دیکھو تم نے خود اپنی کتاب کے اندر، تمہارے اندر یہ مذکور ہے، اور یہ وہی نبی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے رہے، یہ بھی وہی پیغام لے کے آیا ہے، تو تم اس کے اوپر جو ہے ایمان لے آؤ. تو گویا ان کو بتلا کر یہ، اور انہیں ان کی کتاب کی طرف نسبت اور اپنی کتاب میں جو مذکور ہے وہ بتا کر ان پر ایک حجت تمام کر دی گئی ہے، اور پھر تفصیل سے ان پر وہ فرد جرم عائد کی گئی ہے جس کے سبب ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے. اور یہ مضمون جو ہے قریب قریب اس صورت کے نصف پہ اوپر جو ہے مشتمل ہے. اور یہ ایسی جو ہے وہ شہادتیں اور ایسی دلائل ہیں اور ایسے حقائق کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی وہ تردید نہ کر سکتے تھے. پھر ان کی مخالفت، سازشیں، وسوسہ اندازیاں، گج بیسیاں اور ان کی مکاریوں کو کھول کے بیان کر دیا گیا کہ یہ ہے تمہاری حقیقت. پھر جیسے عدالت کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ یہ تم پہ جو ہے تمہارے اوپر یہ الزام ہے، اب تم بتاؤ کہ کیوں نہ تم کو سزا دی جائے، جج کہتا ہے جب. تو بالکل اسی طرح جو ہے یہ بہت طویل ایک فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں معزول کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ تم نے یہ 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 جرائم کیے. اللہ تعالیٰ کوئی عام منصف اور جج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس فرد جرم کا تذکر کیا ہے تو وہ بالکل پروون فیکٹ ہیں جن کو وہ خود جو ہے کسی طریقے سے چھٹلا نہ سکتے تھے. یہاں پہ جو ہے جو ان کو جب معزول کیا گیا تو اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ انحطاط کے جس گڑے میں یہ امت چلی گئی ہے، اسی وجہ سے ان کی تمام جو ان کی کمزوریاں تھیں، ان کی سرکشیاں تھیں، مذہبی غلط فہمیاں تھیں، ان کے عقائد کے جو ہے وہ جو 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 وہ تھے جو عقیدے کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، اور عملی طور پہ جو ان کے اندر گمراہی موجود تھی، سب کی ایک ایک نشاندہی کر دی گئی ہے. اور پھر اس کی جو ہے تاکہ امت مسلمہ، یہ نئی امت، اس سے خبردار رہے اور اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے. اب بنی اسرائیل کو ان کی طرف سے نعمتیں میں جیسے میں نے کہا کہ یاد دلائی گئی ہیں، اور ان نعمتوں میں خاص طور پر ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت ان کو دی ہے اور امامت کی نعمت کا تذکرہ خاص طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دوسری قوموں کا امام بنایا، لیڈر بنایا، کہ اللہ تعالیٰ اور کتاب کا حامل بنایا اور شریعت کا حامل بنایا، کہ اس کتاب اور اس شریعت اور اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے پیغام اور دعوت کو تم دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ٹھہری. یہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے، بلکہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اور اسی کی بنا پہ انہیں توحید اور شریعت اور کی امانت جو ہے ان کی سپرد کی اور ان پہ اتنے انعامات فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد پیمان کیے، تکرار کے ساتھ ان کا ذکر ہے جو ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدے کیے اور تم نے ایک ایک کر کے ان سب کو جو ہے توڑ ڈالا. پھر بنی اسرائیل سے مختلف ادوار میں جو عہد لیے گئے، ان میں سے ایک عہد یہ بھی تھا کہ جب آخری رسول آئے گا تو یہ اس آخری رسول کا نام تک جو ان کی کتب کے اندر بتا دی گئی اور علامات تک بتا دی گئی کہ یہ پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے. اور اس کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ تمہاری جو اپنی کتاب کے اندر جو تم پڑھتے ہو اس کے اندر تذکرہ موجود ہے، اس کے اوپر تم ایمان لے کے آؤ. اور اس کے اوپر ایمان نہ لانے کو بھی جو ہے چارج شیٹ کے اندر اس میں شامل کیا گیا اس کو. اب عزیز بھائیو، مختصراً جو ہے हमने तो ये तफसीलन पढ़ी है ये पूरी फर्द जुर्म, लेकिन इसको हमने कहीं पे एनलिस्ट नहीं किया था कि एक जो है जगह पे, तो उसको हमने यहाँ पे वो देख ली वो किया है। तो हम बहुत जो है वो बस इजमालन इसका तस्करा करेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला से किए अहद व पैमान की उन्होंने नाफरमानी की। अल्लाह ताला के अहकाम को सुनते थे और कहते थे कि समेना व आसैना, हमने सुना और हमने इता हमने जो है नाफरमानी की। मुसलमानों को जो है वहां पे कहा गया कि तुम ऐसे मत करो, और तुमको समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। ये वो कौम थी जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और खुद को जो है भूल जाते थे, अल्लाह की आयत को दुनिया में और दुनिया के बहुत ही कलील फवायद के लिए बेच देते थे, और जहां पे ट्विस्ट कर देते थे दीन के मामलात को और दीन के अहकाम को, और दीन की जो अल्लाह ताला ने जो उतारे थे अहकाम उनको जिस तरफ भी थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा था उसको जो है ट्विचिंग करके और उसको एक तरफ खींच कर और कहीं से कहीं जो है मामला पहुंचा देते थे। और इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको जो है बहुत थोड़े फवायद के अवज अल्लाह ताला की आयत को बेचने से ताबीर फरमाया है। तो ये इस कौम का वतीरा रहा है। अल्लाह ताला की अजीम नियमतों का जिसका भी हमने तस्करा किया, मुसलसल ये नियमतें रही हैं और ये मुसलसल नाशुक्र गुजार जो है वो बने रहे हैं पैगम्बर के होते हुए, जो अल्लाह ताला की जो है वो अल्लाह ताला की जो इबादत है उससे मोड़कर शिर्क इर्तिकाब जो है किया और बछड़े की परस्तिश जो है वो गौसाला परस्ती शुरू कर दी, अपनी ईमान को अल्लाह ताला की रूयत से मशरूत कर दिया कि अल्लाह ताला हमें नजर आएगा तो हम जो है वो ईमान लाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से जो आसमानी रिज्क अल्लाह ताला ने उनपे उतारा है उसको मुस्तरद करके अनाज और सब्जियों का मुतालबा करते रहे, और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश जो जो सरानवर्दी की सूरत में उनपे आई है उसमें भी वो अल्लाह ताला से रुजू न करते थे। अल्लाह के मुकर्र करते हुए जो जो अल्फाज अल्लाह ने उनके लिए बताए थे इस्तग़फार के उनको जो है वो बदल देते दे थे, और ये ना ये सरकशी और ना फरमानी की एक मिसाल थी। अल्लाह ताला के पैगम्बरों को बिल्कुल अलान ना हक कत्ल करते रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकाम को पस पुश डालते रहे हैं, और जो अहकाम उन पे लागू होते थे तो उसमें कीलो कार और हुज्जतें जो है वो निकालते थे, जिस तरीके से घाय के मामले के अंदर भी वो जो है वो बचने की कोशिश करते रहे। हक और बातिल को दानिस्तन जो है गड़बड़ कर देना के जो है ताकि बातिल के ऊपर चला जा जाए लेकिन उसको हक के साथ मिला दिया जाए ताकि लोगों को जो है इश्तबाह हो, लोगों को जो है वो कहे नहीं हम तो हक के आलमबरदार हैं, हम हक के चलने वाले हैं। हक के ऊपर बातिल की मुलम्मत साजी जो है तिलबीस, हक को बातिल जो है अल्लाह तलबिसुल हक का बिल बातिल जो है वो इस तरीके से ये काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसको भी उनके जुर्म के तौर पर गिनवाया है। हक को छुपाना, ये जो किताब है, ये जो शरीयत है, ये जो दीन अल्लाह ताला ने उतारा था, अहकाम उतारे थे, उसका फिर उसको छुपाना, इजहार ना करना, उसकी गवाही ना देना, उसको प्रचार ना करना, उसको लागू ना करना, उसकी तालीम ना देना, तो कुरान ने इस जुर्म को उनके उम्र जुराइम के तौर पे पेश किया कि ये उनका बहुत बड़ा जुर्म था कि उन्होंने दीन को और दीन के जो मामलात थे और दीन के अहकाम थे और जो किताब थी और किताब की तालीम को छुपाया। तो ये जो कितमान है इसको जो है कुरान ने कितमान का नाम दिया है, यानी जो है छुपाना, तो ये उनकी पूरी जिंदगी पे जो है मुहित था। ये कितमान हक था, ये कितमान हिदायत थी, ये कितमान शरीयत था, और ये कितमान किताब इन तौरात था जिसके सबब अल्लाह ताला ने उन पे शदीद वईद नाजिल फरमाई, और ये शदीद वईद लानत की सूरत में आई है कि ये काम करने वाले, ये कितमान करने वाले किताब का और शरीयत का और दीन का और दीनी मामलात का, तो फरमाया कि अल्लाह ताला की इन पर लानत है, उनके लोगों की लानत है, और उनके जो है वो लानत करने वाले यानी फरिश्ते भी लानत करते हैं, तो सब की लानत इन पे की गई। ये इतने बड़े जुर्म के तौर पे जो है तो गिनवाया गया है। रजीज भाइयों, अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्यों इतने बड़े जुर्म के तौर पर गिना है। उसकी वजह ये है कि एक ऐसी उम्मत, ये याद रख लेना चाहिए कि इसी काम को हमारे सपोर्ट किया गया, एक ऐसी उम्मत जो दुनिया के रहनुमाई के लिए उठाई गई हो, उसके जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया हो कि दुनिया की हिदायत का फरीजा सर अंजाम देना है अल्लाह ताला के जो है नायब के तौर पर, और उसकी तरफ से ये फिर मुजरमाना गफलत हो, तो ये फिर गोया उन तमाम लोगों के लिए, उन लोगों को जिनके लिए इस उम्मत को बर्पा किया गया है उनको हिदायत से महरूम कर देने की मुतरादिफ है। इसलिए इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा और शदीद तरीन वईद जो है इस पर नाजिल की गई है। इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ये वही काम है जो हमारे सपुर्द भी, इस उम्मत के सपुर्द भी किया गया है, और ये आयात जो है वो बिल्कुल सूरह बकरा के दूसरे रुकू के अंदर है, शुरू के अंदर, तो सूरह बकरा के दूसरे पारे के दूसरे रुकू के अंदर है, ये इंसान को हिला के रख देती है मुसलमानों को। अकीदे आखिरत की गुमराही और आखिरत की जवाबदेही से बेनियाज हो गए, अल्लाह ताला की किताब के अंदर लफ्जी भी और मानवी तहरीफ भी करते थे, अल्लाह ताला की आयत करदा जो सब्त का कानून था खुलम खिलाफवर्जी की, आपस में उनको मवद्दत मवाखात और भाईचारगी का जो है वो दर्स दिया गया था, लेकिन शदीद इख्तलाफ कत्लो गारत में मुब्तला रहे और एक दूसरे को बस्तियों से निकालना और कैदी बनाना और उस पर फिदिया लेना जो है वो आप जायज ठहराते रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन करार देते थे कि ये जो है हमारी दुश्मनी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है कि किताब और वही नाजिल कर ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के कलमात कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिशें करते रहे, अल्लाह ताला के अहकामात और उसकी हकमियत को और उसकी हैसियत को चैलेंज करते थे कि अल्लाह हम नहीं मानते कि अल्लाह ने ये जो है ये मुकर्रर किया है ये चीज और वो किया है और अल्लाह ताला हमसे ये मांगा है और अल्लाह ताला ने उसको बादशाह मुकर्रर किया, तो ये काम करते थे। मुआशरे में सनसनीखेज झूठी खबरें और दुश्मन के साथ साजबाज जो है वो जो फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार भी जो है ना अदा करते रहे, जैसे मदीना में इन्होंने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिद होने के बावजूद जो है कुफारे मक्का से और बाहर आने वाले दुश्मन हमला आवरों से इन्होंने साजबाज की। अपने वक्त के पैगम्बरों की तकरीर न मानना, जो है जैसे जो है वो तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया तो फिर इस पे भी इन्होंने जो है वो एतराज किया, हालांकि उन्हें पता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जादू सीखना जादू करना हालांकि उनकी शरीयत में हराम करार दिया गया, लेकिन इसके भी रसूल की मैयत में जो है जिहाद फी सबीलिल्लाह से इनकार कर दिया। नबी अज़ फरमाया कि तुम मूसा और तुम्हारा जो है खुदा जाके लड़ो, हम जो है ये जिहाद करने वाले लड़ने वाले नहीं। हराम होने के बावजूद सूद लेना और देना और सूद को फरोग देना, तो ये आपको पता है कि दुनिया के अंदर सूद को फरोग देने के अंदर ये बनी इसराइल की कौम का बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। ये रिश्वत लेना और रिश्वत देना, जुल्मन और नाहक लोगों के हकूक गसब करना, इस पे भी इनको तंबीह की गई। इल्म होने के बावजूद अमल ना करना, एक बहुत बड़ा जुर्म इनका गिनवाया गया है। फिर एक बड़े जुर्म के तौर पर वो अमर बिल मारूफ व नहीं मुनकर, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने का फरीजा सर अंजाम न देना, और ये भी उनके बड़े जराये में से जिनके अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई, और अपने आलिम और दरवेशों को उन्होंने रब का दर्जा दे दिया, जिनको उनको हलाल और हराम का हक दे दिया कि जिस चीज को हलाल करार दे हम जिस चीज को हराम करार दे। दीन के अंदर जो है बड़ी इंतहा पसंदी गुलू जो है वो उससे काम लिया, हालांकि अल्लाह ताला के दीन जो है वो इत्तेदार पे मबनी निजाम हुआ करता है। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब जो उनकी तौरात थी उसके उसके अहकामात को मुआशरे में नाफिज न किया, नाफिज न करना और उसकी बुनियाद पर एक निजाम न बनाने को भी अल्लाह ताला ने शदीद इस पे नकद की है। अल्लाह के रसूल से गैर जरूरी गैर मुतल्लिक हद से मुतजावज और कट हुजरती पे मबनी सवालात जो है वो करना, ये उन्होंने किए। दीन शरीयत के साथ हीला बाजी लेतोलाल और ढिटाई का मामला जो है वो करना, इसका मामला करते थे, और कोई अदब और तमीज और अल्लाह ताला का जो है वो जो दीन के मामले के अंदर कोई जो एक हजा का मामला है उससे बिल्कुल जो है आरी थे। दीन और शरीयत के मोहकम आयात जो बिल्कुल वाज अहकाम थे उनकी बजाय झूठी आरजू जो उनकी विशफुल थिंकिंग थी इन पर इंसार करते कि देखो ठीक है कुछ भी हो लेकिन हम तो अल्लाह ताला की चाहिए, हमें तो दोजख की आग बस छुएगी ही नहीं। फिर अपनी नस्ल परस्ती और नस्ली कौमी असबियत जो है उसमें शदीद तौर पर ये कौम मुबतला थी और मुबतला है अब भी, और उस वक्त भी ये अपने सिवा और नबी पर इसलिए ईमान ना लाते थे कि वो बनी इसराइल के अलावा जो है बनु इस्माइल के जो है वो दूसरे शाह बनु इस्माइल से वो जो है इस वजह से उनकी ईमान नहीं लाते थे। ये उनकी एक है, अगरचे ये तवील जो है बहुत है इसके अलावा भी है लेकिन चंद एक का तस्करा हमने किया है। तीसरा हिस्सा जो है इमामत के मनसब पे उम्मत मुसलमान का जब तकरर हुआ और नई उम्मत की तश्कील हुई है तो इंसानी इनफरादी और इजमाई जिंदगी के लिए फिर अहकाम जो है अल्लाह ताला ने उतारे और इस उम्मत की के लिए जो है वो हिदायत खास तौर पे उतारी। अब मेरे अजीज भाइयों ये जो मामला है ये जो जो सिलसिला है 19वें रुकू से ये चलता है आगे और ये 39 रुकू तक चलता है, तो इसमें दो जो जैसे हमने पहले कहा कि दो लड़ियां जो है वो बहुत नुमाया है, एक शरीयत की है और एक जिहाद की है। जिहाद अब देखिए कि ये वो हिस्सा है तकरीबन 140 आयात पे मुश्तमिल हिस्सा, जिसमें इस्लामी जमाइयत, इस्लामी मुआशरे और इस्लामी सोसाइटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के अहकाम दिए गए, इसलिए ये मिक्स्ड है। तो उसकी एक एनालॉजी आप देख लें, वो ये है कि जैसे एक रस्सा है और रस्सा जो है वो मुख्तलिफ उसकी डोरियां उनमें बटा होता है, तो कभी कोई आगे आ जाता है, उसको अगर अनवाइंड करें आप तो आप देखें कि उसकी कभी कोई आगे, या उसको आगे भी चलाएं तो वाइंड भी करें तो उसमें जो है कभी कोई एक आ जाती है, कोई अभी आ जाती है, तो वो मुसलसल चल रही होती है साथ एक दूसरे के और वो आगे बढ़ रही होती है। इसी तरीके से शरीयत के अहकाम और जिहाद के अहकाम जो है मुसलसल। अब शरीयत के अहकाम में क्या है, इबादात है और अल्लाह ताला के अहकाम है, शरीयत के अहकाम है, और फिर जिहाद के अंदर क्या है, जिहाद बिल माल है और जिहाद बिल नफ्स है। फिर आप देखेंगे इबादात के अंदर फिर तमाम इबादात, उसमें नमाज, रोजा, हज, जकात है, अहकाम जो अहकाम है उनमें मुआशरती है, आयली अहकाम है, इकतसादी अहकाम है, वगैरह वगैरह है, और फिर जिहाद बिल माल में इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, और जिहाद बिल नफ्स में जिहाद फी सबीलिल्लाह या किताल फी सबीलिल्लाह है। अब ये वो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा जो उम्मत मुसलमा को जो है खिताब है, जिसमें उम्मत मुसलमा के जिम्मे काम बताया गया कि तुम्हारा ये काम है, और फिर उसके बाद फरमाया कि ये मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मुतफरिक जो है वो डाइवर्स किस्म के अहकाम हैं पूरी उम्मत के लिए, इज्तमाइयत के लिए इस हिस्से के अंदर जो दिए गए। अब उम्मत बर्पा होने पर किबला की तब्दीली जो है आपकी सबसे बड़ा मजर ठहरी, जो ही किबला की तब्दीली हुई उसके मतलब है कि अब पुरानी उम्मत को मंजूर कर दिया गया, उनका किबला भी तब्दील कर दिया गया, नई उम्मत को जो है खड़ा कर दिया गया, नया रसूल, नई उम्मत, नया किबला, ये जो है। और फिर साथ ही बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर जो है इस उम्मत का मकसद नसब बता दिया गया, इस उम्मत को क्यों बर्पा कर दिया, वो बाबा के जाले का जलना को उम्मत हम वसत अल तकून शुहदा अल नास वजकून रसूल अलैकुम शहीदा, हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त के तौर पर खड़ा किया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। बड़ी मार्कतुल आरा आयात है अजी हमारी जिम्मेदारियों के अतबार से और मानवी गहराई के अतबार से, और ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का भी ऐलान है, और ये एक अजमत का भी ऐलान है, उम्मत की अजमत का ऐलान भी है, और उम्मत के ऊपर एक अजीम तरीन जिम्मेदारी का भी। अब ये उनका फर्ज मनसबी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन की गवाही उनके ऊपर अपने कौल व अमल से दी है, अब यही गवाही वो अपने कौल व अमल से पूरी नौ इंसानी के ऊपर दे, ये उनके ऊपर है, और रसूल के नुमाइंदे की हैसियत से बिल्कुल सही फिक्र के साथ और सही अमल, अमले साले और निजाम अदल की जो तालीम अल्लाह ताला जो जो अल्लाह के रसूल ने उन्हें दी है, वो अल्लाह के रसूल ने जो इस इन तक पहुंचा दी है और जो काम करके दिखाया है, अब यही काम उन्होंने आगे करके दूसरे इंसानों तक जो है ये पहुंचाना है, और ये शहादत देनी होगी कि रसूल ने जो कुछ भी उन तक पहुंचा दिया था उन्होंने मिनो बिलोकम खास लोगों तक ये पहुंचा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत रसालत का मकसद भी बताया कि कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुम किताब अल-हिक्मा, ये जो है नबी वसल्लम का बताती है, ये आयत कुरान हकीम में चार मरतबा जो है वो रिपीट हुई है कि तमान हक को, जैसे हमने पहले कहा कि शदीद तरीन वईद का जो है मिस्ताक ठहराया और बिन इसराइल के बड़े जुराम से जो गिनवाया गया था, यहाँ भी जिक्र है कि कहीं तुम मुसलमान जो है इस के अंदर जो है पुनः जो है पड़ जाए। फिर आयतुल आयत, आयतुल आयत जो है मजाहिर फितरत के ऊपर, ये जो नेचुरल फिनोमेनाज है इनके ऊपर एक तवील जो आयत है आयत 64 164, उसका जिक्र है कि कायनात के अंदर बिल्कुल खुले सफात की तरह फैले ये जो अफाकी दलाइल मौजूद है, इनके अंदर जो शख्स भी जरा सा गौर करेगा वो यकीन और तस्दीक और ईमान की दौलत से मालामाल होगा। और ये जो इस्तदलाल इस्तेमाल कुरान इस्तदलाल इस्तेमाल किया है, जो कुरान का जो है तुरा इम्तियाज है और कुरान के मोजज़ा है कि जो भी शख्स इन पर गौर करेगा वो उस पर ईमान की हकीकत तक जो है वो पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर एक जामे तरीन नेकी के तस्वर पर मबनी एक आयत है जिसको आयतुल बिर कहा जाता है, इसमें बताया गया बड़ी अहम आयत है 177, ये भी तवील आयत है, और उसमें बताया कि नेकी है क्या, उसकी हकीकत क्या है, उसकी जड़ और बुनियाद क्या है, उसकी रूह क्या है और उसके मजाहिर क्या है, और इन मजाहिर में अहम तरीन कौन से हैं, और सेकेंडरी पोजिशन सानवी हैसियत किसकी है। قرآن کے یہ جو علم الاخلاق کے اوپر بھرپور انداز میں یہ آیت روشنی فراہم کرتی ہے, اور اخلاقیات قرآنی یعنی قرآنک ایتھکس پر یہ سورت جو ہے اس کی ایک بنیاد اور جڑ کے طور پہ جو ہے یہ ہمیں دل مہیا کرتی ہے. نیکی کا تصور بتایا گیا کہ اس کے اندر کہ نیکی کا تصور ایک شعور ہے, کچھ اعمال ہیں اور ایک طرز عمل ہے, اور یہ تصور حیات ہے. یہ نیکی کا کوئی محدود تصور نہیں ہے بلکہ جامع تصور ہے. اس تیسرے حصے کے اندر اسلامی نظام زندگی سے متعلق احکامات ہیں, اور احکامات کی نوعیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ احکامات جو ہے بنیادی نوعیت کے ہیں, کچھ عبوری یعنی انٹرم کا پیریڈ کے طور پہ بتائے گئے ہیں کیونکہ ان میں تدریج لانا تھی, ظاہر ہے ان کو یکدم جو ہے لگایا جا ان کو نہیں نافذ کیا جا سکتا تھا اور حکمت کے خلاف تھا, کچھ بالکل جو حتمی ہیں. تو ان کے اندر ایمانیات ہیں, سورت کے شروع میں ہیں, پھر وسط کے اندر بھی اور آخر میں ایمانیات کا تذکرہ ہے, کیونکہ ایمانیات سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے, عقیدہ ہے یہ. پھر اس کے بعد عبادات ہیں, عبادات کے اندر تمام عبادات کا ذکر ہے, اس میں عمرہ بھی, صدقات بھی, صبر بھی. پھر اس کے اندر معاشرتی سماجی احکام ہیں جس میں فرد, خاندان, اجتماعیت, میاں بیوی کے معاملات, والدین, رشتہ دار, ہمسائے, تمام انسانی برادری سے متعلق احکامات ہیں. خاندان کا بطور ادارے کے, بطور ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جو ہے وہ تعارف کیا کروایا گیا ہے, اس کو پیش کیا گیا ہے. اس کے اندر نکاح, طلاق, خلع, عدت, مہر, میراث, عورت کی حیثیت, تربیت اولاد, اولاد کے حقوق, قرابت داروں کے حقوق, جان و مال کے تحفظ, حسن سلوک, عفو درگزر, شہادت, عدل اجتماعی, انسانی جان کی اہمیت, انسانی حقوق کا تحفظ, یہ معاشرتی اور معاشی مساوات, شراب, جوا, انفاق و صدقات, صدق, ایفا عہد, رشوت, قتل, دیت, قصاص, قسمیں جو ہے اموال یتامہ اور گواہی کے معاملات جو ہے اس کے اندر معاملات. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تفصیلی معاشرتی اور جو ہے سماجی معاملات اور احکامات جو ہے بیان کیے گئے. اس کے علاوہ معاشی احکام بھی بیان کیے گئے, ان میں حق ملکیت ہے, قرض ہے, رہن, کاروباری معاملات میں مسائل کے کاروباری معاملات کے مسائل ہیں, پھر جو ہے حلال و حرام کے احکام ہیں, سود, تجارت, کاروباری امور میں کتابت اور گواہی جیسے معاملات جو ہے یہ بھی اسی کے اندر ان کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے. ان تمام احکامات پر منوم جو عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر سمٹ کر دو, مکمل سپردگی ہے اسلام کے اندر. یہ مطالبہ جو اس قرآن کے اندر, اس سورت کے اندر دو انداز میں پیش کیا گیا, ایک مثبت انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے, یعنی ایجابی انداز میں, پوزیٹو انداز میں, اور منفی بھی. مثبت انداز میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ ایک مکمل پیکج ہے, کسی استثناء کے بغیر پوری زندگی اسلام کے تحت لے آؤ. تمہارے خیالات, نظریات, علوم, طور طریقے, معاملات, تمہاری پارلیمنٹ, عدالت, تمہاری ہر چیز جو ہے اسلام کے تابع ہو, انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ایک پورا فل پیکج ہے اسلام, اس کو پیکج کے طور پہ جو ہے وہ آدھا تیتا آدھا بٹیر نہیں چلے گا. پھر اس کو جو ہے ایک منفی اسلوب کے اندر بھی بیان کیا گیا, اور وہ جو ہے پہلے سے کے اندر بیان کیا گیا تھا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے پر نہیں لاتے؟ جو ایسا کریں گے تو دنیا میں پھر ذلیل و خوار ہوں گے اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اور یہ میرے بے عزیز بھائیو ایک خاکہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پوری کی پوری جو ہے وہ اسلامی زندگی سے متعلق احکامات ہیں, اور یہ ایمانیات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, اسلامی ریاست کے معاملات بھی ہیں. دیکھ لیں کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے لوگوں پورے کے پورے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. چوتھا ایسا عظیم دعا پہ مشتمل ہے, آپ ہم اس کو ابھی ریسنٹلی ہم اس کو پڑھا ہے کہ یہ اسلام کے عقائد اور طرز عمل کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ تم زمین و آسمان کا بادشاہ ہے, وہ امامت کی تبدیلی کا حق رکھتا ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لازمی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے سپرد, آگے نے آپ کو اطاعت کی جائے اور سر تسلیم خم کر دیا جائے اس کے احکامات کے آگے, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, ان سے مغفرت طلب کرنا اللہ سے, اور مومنین کی خصوصیات میں سے یہ بیان کیا گیا ہے. اور अपने फराइज को अंजाम देते हुए जो है मोमिनीन का आजी का इजहार और एहसास जो है वो करते रहते हैं कि अल्लाह हमसे ये काम का महकू नहीं हो सका, हमें तू माफ फरमा। अल्लाह के इंसान की जिम्मेदारी की मुक्तदरत और वसत जो है उसके लिहाज से होगी, उनकी जिम्मेदारी उनके हिसाब से उनका मुहासबा होगा। और ये भी कि जो शख्स जो अमल करेगा जो खुद करेगा उसी का उससे जजा और सजा जो है किसी और की जजा के अमल की जजा और सजा उसको न दी जाएगी, ये कानून भी बयान किया गया। और क्यामत के रोज लोगों का जो मुहासबा उनकी नीयत और उनके अमाल के अतबार से होगा। और ये लोग ईमान वाले जो है मुसलसल अल्लाह ताला से मगफरत अफ़ो गुज़र की दुआएं दरख्वास्त करते रहते हैं। ये मेरे अजीज भाइयों मुख्तलिफ जो है ये पूरी सूरत का एक मुख्तसरन जायजा था। हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ताकि अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस सूरत को पढ़ने के और इसके पे जो अपनी इस्ताद के मुताबिक गौर फिक्र करने के काबिल हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين وآخر دعاء